के पीछे पीछे अर्जुन भी वहां जाते हैं। और वो जो घोड़ा था क्या करता है, एक बहुत बड़ी शिला को देख करके वो घोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। घोड़े में जो ना बहुत मतलब समझो कि दिव्य बुद्धि है घोड़े के पास, तो उस शिला को देख करके वो आश्चर्य में पड़ गया। इसका मतलब है कि वो शिला कुछ विशेष आश्चर्यजनक होगी जो घोड़ा जानता है और हर कोई नहीं जानता है। घोड़ा सर्वज्ञ है, तो शिला को देख करके वो समझ गया कि ये शिला क्या है। अब घोड़ा जो है क्या करता है, आप देखिए घोड़ा क्या करता है। ये एक योजन लंबी शिला थी, एक योजन का मतलब 8 मील 12 किलोमीटर लंबी एक शिला, सोचो है अद्भुत है कि नहीं। 12 किलोमीटर लंबा पत्थर का एक टुकड़ा, आप सोचो कैसा लगेगा देख करके। तो घोड़ा आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वो जानता है कि ये शिला कौन है। तो उसने क्या करना शुरू किया, उस शिला पर अपने अंगों को रगड़ने लगा। अब कौन जाने इन घोड़े की जो है ना बुद्धि कुछ विशेष है। पूर्व काल में श्री हरि ने अपने चरणों से छूकर शिला को स्त्री बना दिया था। श्री हरि ने मतलब भगवान राम ने तो मानो यही विचार कर उस मूर्ख घोड़े ने भी अपने पैरों से उस शिला का स्पर्श किया। वो भी स्त्री थी, वास्तव में एक स्त्री जो ना साफ से शिला बन गई, तो ये भी हरि है ना। पुरा हरि शिला मंगिन स्पर्शाद स्त्री त्रुम पानयन इति मत्वा हरिर्मंदा पस्पर्शयन दृशदम तदम। तो वो स्त्री हरि थे और ये मंद हरि है, मंद हरि माने मूर्ख हरि, हरि माने घोड़ा भी होता है, तो ये भी हरि है वो भी हरि थे। तो वो भगवान राम श्री हरि हैं और ये मंद हरि हैं, मूर्ख घोड़ा है। तो वो सोचता है कि मैं भी स्त्री बना दूं इसको शिला को, तो वो अपने पैर रगड़ने लगा। तो हुआ क्या कि वो स्वयं ही उसमें चिपक गया। वो क्या बनाएगा उसको स्त्री, शिला से स्त्री, वो खुद चिपक गया उसमें। क्योंकि जो लोग भगवान विष्णु की नकल करने लगते हैं उनके शरीर इसी प्रकार जड़ हो जाते हैं। भगवान की नकल कर रहा है तो क्या हो गया, उल्टा परिणाम हो गया, वो खुद ही शिला बन गया, मतलब वो खुद जड़ बन गया। भगवान तो अच्युत हैं, भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी का, भगवान का प्रभाव सब पर पड़ता है। तो भगवान राम ने जो ना शिला से स्त्री बना दिया। इन घोड़ा जो है शिला से स्त्री बनाना चाहता है, लेकिन वो खुद भी शिला बन गया उसको छूने से। वो भी बद्रले पत्तमापन्न चली तुम ना तथा कहा नाम सा धर्मता के पी गच्छन्ति समताम हरे आराधनादृते प्येवं भवन्ति जडदेहिनाम। उस अश्व को निश्चल देखकर कुछ जो रक्षक थे अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगे, कुछ नैनक हंसने लगे कि क्या ही घोड़ा खुजलाने का सुख उठाने के लिए चिपक गया है, खुजली का आनंद ले रहा है क्या ये जो चिपक गया शिला में, हंस रहे हैं कुछ रक्षक लोग। जडीभूतम समालोक तम हरि हरि सेवकाम ताटहासम जगर जुस्ते जसो के पी सैनिकाम संघर्षण सुखान लीनाम किमस्लो इतरे ब्रुवन। अब कुछ सैनिक अर्जुन के पास जाकर बोले शिला से टकरा कर घोड़ा मर गया। अब वो तो रहस्य नहीं जानते ना, क्या रहस्य है, वो सोचते शिला से टकरा करके घोड़ा मर गया क्योंकि वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, वो बिल्कुल पत्थर जैसा बन गया। अतः अश्वमेध यज्ञ तो स्वयं ही संपन्न हो गया। अब वो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है, तो हो गया अश्वमेध यज्ञ। केपी गर्जुन श्यापी कथियंती हयो मृताम शिला संघटम हय मेधो भवत स्वयं। उन सैनिकों की बात सुनकर अर्जुन का रंग काला पड़ गया। क्यों, चिंतित हो गई, अर्जुन का रंग काला पड़ गया। और वे प्रद्युम्न के साथ वहां घोड़े की वो दशा देखकर बड़े विस्मित हुए। उस समय वीर अर्जुन का मुख उसी प्रकार मलिन हो गया जैसे रात्रि के समय कमल कुमला जाता है रात में। फिर भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन बोल उठे, अरे घोड़े को छुड़ाओ, शीघ्र छुड़ाओ घोड़े को। तत्रत्वा वचनम तेषाम अर्जुना कृष्ण तामगा प्रद्युम्न सहित तत्र हयम् दृष्ट्वा तथा विधम विसिस्माये ततो वीरो ममले पंगजमन्यसी वाच भीमा वरजो मोचताम मोचताम इति। अर्जुन की आज्ञा पाकर लोग हाथों में मोटे मोटे कोड़े लेकर दौड़े, क्यों? घोड़े को मारने के लिए। घोड़े को चाबुक मारते हैं, मुक्के मारते हैं, घुटने मारते हैं घोड़े को। प्रदुद्रभो कथा स्थूला गृहीत्वा ताडयन बला मुष्टि फिर जान भी क्रोधा नराश्चार्जुन नोदिता। परंतु वो घोड़ा शिला से अलग नहीं हुआ। अब देखो कोड़े मार रहे हैं, घूसते मार रहे हैं और घुटने मार रहे हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ कि शिला से अलग नहीं हुआ वो घोड़ा। देखा कितनी आश्चर्य की घटना। जैसे विष्णु भक्त बड़े बड़े कष्टों के पड़ने पर भी विष्णु की सेवा से नहीं हटता है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया है कि भक्त को जैसे बहुत संकट आए विष्णु की सेवा से हटता नहीं है, ऐसे वो जो घोड़ा है वो शिला से चिपका हुआ है। वो भक्त है वो भी जिद में पड़ जाता है तो कृष्ण की सेवा से चिपका ही रहता है, छोड़ता नहीं कृष्ण की सेवा को, तो वो घोड़ा शिला से चिपका ही है। तो महात्मा अर्जुन ये जानने के लिए कि शिला कौन है, इसका क्या वृतांत है, मुनियों से ये पूछने के लिए दूतों को आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर दूत तुरंत ही चल पड़े। कुछ दूर पर उन्हें एक रमणीय आश्रम दिखाई पड़ा जो हरे हरे पत्तों से आच्छादित वृक्षों से भरा था। नास्वा प्रतंग बभुवात है वैष्णव विष्णु से बना तदा ते प्रेरिताश्चारा अर्जुनेन महात्मनम् प्रष्टुम् केयम् शिला किंचिन् इति ते त्वरिता मुनीन् नदृशोश्चाश्रमम् रम्यम् हरिन् पञ्चयद्रुमाकुलम्। अब वो जो है जिस ऋषि का आश्रम था उस ऋषि के प्रभाव से देखो आश्रम कैसा था, कोई हिंसा नहीं थी, यहां तक कि व्याघ्र गऊओं के साथ हिल मिलकर रहते थे। सोचो व्याघ्र मतलब शेर गाय के साथ घूमते फिरते थे उस ऋषि के प्रभाव से। और सर्प जो है अपने बैरी यानी मोर नेवलों के साथ खेलते थे, और चूहे क्या करते थे, वन बिलावों के मुख की दाढ़ों से अपना शरीर खुजलाते थे। चूहे वन बिलाव की मुंह की दाढ़ से अपना शरीर खुजलाते थे चूहे। उल्लू जो है कौओं के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा करते थे। उस आश्रम में महर्षि सौभरी थे, सौभरी मुनि अपने नेत्रों से देखकर वे दूत परम हर्षित हुए और लौटकर उन्होंने अर्जुन से सारा वृत्तांत बतलाया। तमाश्रमं समालोक्य दृग्विस्तं सौभरी मुनिम् अर्जुनाय समाचक्रं चारासे हर्षे निर्भरं। तो महाबाहु अर्जुन उन मुनि के पास गए, उनके साथ में गौवनाश्व वृष केतु सात्विकी प्रद्युम्न सब थे उनके साथ में। तो महर्षि सौभरी को बैठे हुए देखा उन्होंने, और महर्षि अपने शिष्यों को ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन करा रहे थे, और बहुत से ऋषियों को भी वेदांत आदि शास्त्रों की शिक्षा दे रहे थे। तब अर्जुन महर्षि सौभरी और वहां उपस्थित सभी मुनियों के चरणों में अभिवादन करके बोले, तथो अर्जुनो महाबाहुर यौवनाशो विसद्वजाम सात्विकी कृष्ण पुत्र पंचयते तम मुनिम ययुम अद्राक्षुस्ते सौभरिम तम तर्सनम उपस्थितम अध्यापयन्तम् शिष्यां स्वां निचम सामे यजुं सिचम वेदांतादीनि शास्त्रं पाठयन्तम् ऋषीन् बहुं अर्जुनस्तम नमस्कृत्य तान् मुनीन् अब्रवीन् वचः। अर्जुन ने कहा, तपस्वी मैं धर्मराज का भाई हूँ और उनके अश्व की रक्षा करता हुआ यहाँ आ गया हूँ। यहाँ वो अश्व एक शिला से चिपक गया है। अर्जुन कह रहे हैं तो शिला से मुक्त है, ऐसा उपाय बताइए और साथ ही शिला की उत्पत्ति का काल बतलाइए। तो सौभरी मुनि कहते हैं महाबाहु अर्जुन सुनो, पूर्व काल में चला एक ब्राह्मणी थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, तो आप भी ध्यान से सुनिए। क्या ये शिला पूर्व काल में क्या थी? एक ब्राह्मणी थी जो महर्षि उद्दालक की पत्नी थी। उद्दालक, उद्दालक मुनि की पत्नी थी। इसका नाम था चंडी। शृणुपार्थ है महाबाहो श्लेयम् ब्राह्मणी पुरा आसीत् उद्दालक मुनेर भार्या चंडी इति विश्रुताम्। अब ध्यान से सुनिए, बड़ी अद्भुत कथा है ये। विवाह के समय अग्नि के समीप जब उत्तम ब्राह्मणों ने चंडी से कहा कि तू सदा पति की आज्ञा करना, भरवाते हैं ना पत्नी से कि पति के आदेश का पालन करना, तो बाल चपलता से उसने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं आपसे सर्वथा सत्य कह रही हूं कि मैं कभी पति की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। विवाह संस्कार के समय उसने कह दिया। वाह समय विप्रेर भर्त्यम सदा कुरु यथम संधिश्च चंडी सा नियुक्ता पावकांत के बाल भावात् प्रोवाच भर्तृवं कदाचन श्यामी भो विप्रा सत्यम सत्यम बदामी वहां। तत्पश्चात विवाह महोत्सव के अवसर पर चंडी की बात सुनकर ब्राह्मण लोग कहने लगे। क्या बोले? अभी ये कन्या है इसीलिए ऐसी बात कह रही है, इस विषय किसी को आश्चर्य चाहिए? ठीक है, तो बचपन की बातें ऐसा ब्राह्मण। तब उद्दालक मुनि ने उस चंडी को विदा कराकर अपने घर ले आते हैं, और बाल्यावस्था के कारण उससे घर के काम में उसको लगाते नहीं थे कि कहीं उल्टा मना कर दे, अभी तो बच्ची है, तो कुछ काम उसको कहते नहीं थे करने के लिए। यहां तक कि अग्निहोत्र की परिचर्या भी मुनि स्वयं अपने हाथ से करते थे, उसको बोलते नहीं थे कि कुछ करने के लिए, क्योंकि तो ब्राह्मण को तो और डर लगता है कि उसके आदेश का उल्लंघन होगा, मान हो जाए, इसलिए उसको मौका नहीं देते कि वो कुछ उल्टा काम करे या उल्टी बात बोले। उद्दालको पिताम चंडी आनयत्वम निवेशन बालत्वान्न प्रयुक्ता सा गृह कर्मणि मानद अग्निहोत्रस्य सुश्रुताम कुरुते सा स्वयं मुनि। कुछ दिन बीतने पर जब मुनि ने देखा कि अब ये प्रौढ़ा हो गई है, समझदार हो गई है, तो सोचा कि अब मैं कुछ काम कहूंगा तो करेगी, बताऊंगा तो करेगी। बचपन में उसने बोल दिया, बच्ची थी बोल दिया, तो सोचा कि अब कोई मतलब खतरा नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रिय तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अग्निदेव की परिचर्या किया करो, तुम्हें पराक्रमी और सज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी। दिन कति पते दिन कति परेव प्रौढ़ाम ताम अवलोक साम प्रोवाच गुरु भद्रम ते सुश्रोताम कृष्ण वर्तमान पुत्रा सब भवि वीर्यवंतो बहुश्रुताम। और बस तुरंत उसके नेत्र क्रोध से लग गए, जैसे उन्होंने कहा, और वो कहने लगी, मैं अग्नि की सेवा नहीं करूंगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है। बहुत दिनों के बाद तो बोला था उसको कि चलो अब तो समझदार हो गई है, लेकिन तुरंत उसने ना क्या किया, जहर निकाला उसने तुरंत। इसी प्रकार ब्राह्मण और दालक ने शीघ्र ही अपने कमंडल लाने के लिए उससे कहा कि जल्दी से मेरा कमंडल ले आओ। क्या किया उसने? तब उसने उस कमंडल को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटक कर फोड़ दिया। ये देखकर वो दालक मुनि भय विस्मित हुए कि इतनी गुस्सैल। पुनः रात में अपनी सैया पर अकेले लेटे हुए मुनि ने उसे कहा, प्रिय मैं तुमसे कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, परंतु तुम मुझसे दूर मत सो। ये सुनते ही चंडी बलपूर्वक घर से निकलकर बाहर जाकर खड़ी हो गई। सैवं ब्राह्मणा क्षिप्रम कमंडलम मया चत तम कमंडलुमादाय कराभ्याम धरणी तले आस्फोटयामास ततो ब्राह्मणो विस्मितो अभवन् रात्रो सहसैने तिष्ठन्नेकाकी वाक्यम अब्रवीम त्वां न वक्षे किञ्चिदहं माशेता दूरतो मम गृहाद् विनिष्क्रम्य बलान् बहिश्चण्डी स्थिताभवन्। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ उद्दालक उस चंडी के व्यवहार से व्याकुल हो गए, मतलब बोलना शुरू किया ही था कि बस उसका गुस्सा, उल्टा उल्टा काम कर रही है और गुस्सा दिखा रही है। वे पर्व के अवसरों पर भी संध्या बंदन नहीं कर पाते हैं, तर्पण आदि कोई कर्म नहीं कर पाते हैं, वो तो बस उल्टा बोलती है और उल्टा काम कर रही है और गुस्सा दिखा रही है। और दाल को ब्राह्मण है पुंग वो सौ चंड्या सया वे वलताम जगाम किंचन संध्या दिखे कर्म कर तुम सदा के पर्व स्वे तर्पण आदि। अब क्या हुआ, एक समय कौंडिन्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वो दालक मुनि के घर में आए। कौन? कौंडिन्य मुनि आए। एकदा तन गृहं प्राप्तः कौंडिन्यो मुनि सत्तमः तीर्थ यात्रा पेन शिष्य परिशुभम। दालक ने उन मुनि का आदर सत्कार किया और सुखपूर्वक बैठे हुए कौंडिन्य मुनि ने वो दालक से पूछा। उदालको और घृतानेन पूजया मास तम मुनि पूजिता सुखमासी नहा कौंडिन्यो मुनि ब्रब्रवीन। कौंडिन्य बोले, ब्राह्मण तुम किस कारण इतने दुबले हो गए हो? उनको तो पता नहीं और बहुत बड़ा कारण हो गया था उनकी दुर्बलता का। तुम्हें कोई चिंता व्याप्त हो गई है क्या? तपोधन तुम्हारे कितने पुत्र और कितनी पुत्रियां हैं? कस्मात कृशोसि भो विप्र चिंतया प्रमृतोसि पुत्रा की अंधा कन्या सा तब संति तपोधन। और दालक ने कहा, मुने ना मेरे कोई पुत्र है और ना कन्या ही है, मेरी स्त्री बड़ी कटु वादिनी है, मैं उस दुष्टा से जो कुछ भी कहता हूँ वो उसे नहीं करती है, वह करोड़ों कल्पों में भी मेरी आज्ञा का पालन करना उचित नहीं समझेगी। न मे पुत्रा न मे कन्या जाया मे दुष्ट भाचनी यद्यन वदामिताम दुष्टाम तत्तन्य वै करोति साम तया मे न प्रकर्तव्यम वचनम कल्प कोटि भी। मुझे अभी पितृ श्राद्ध करना है, उसी की चिंता से दुबला हो गया हूं क्योंकि ये करेगी नहीं और मुझे श्राद्ध करना है पितरों का, अब मैं दुर्बल हो गया हूं चिंता से, स्त्री के वश में पड़े हुए मुझको आप उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। परम पित्रम श्राद्धमस्ति करणेयम ततो वृषम कृष चिंता परो ब्रह्मन छादिमाम स्त्री वशम गतम। तब उदालक की दुख पूर्ण बात सुनकर कौंडिल्य मुनि ने उनके कान में मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, समझे, कौंडिन्य मुनि ने हंस करके कान में कहा धीरे से, क्या कहा, उससे उल्टी बात कहो। इससे उल्टी बात कहो तो सीधा करेगी वो काम। तुम सीधी बात कहोगे तो उल्टा काम कर रही है, उल्टी बात कहो तो सीधा काम करेगी ये। दधाला पिता है मां करणे प्रसन्न ब्रवीन मुनि करने लगे त्वासन कैर विपरीतम बचो वदे। वो दालक, तुम अपने उस भार्य से ऐसी बात कहो कि तुम अग्नि की परिचर्या मत कर, तो करेगी वो, मेरे कमंडलों भी लाकर मुझे मत दे। तो वो ला करके देगी। मांगने शुश्रूषणम कार्सी माधा मह्यम कमंडलम इत्यादि वचनम ब्रो यहां समुद्दा लगताम स्त्रियम। यहां से 8 कोस पर यानी 16 मील पर महर्षि गौतम द्वारा सुरक्षित एक तीर्थ है, मैं उसका दर्शन करके पुनः लौटकर यहाँ आऊंगा, तुम अपना पितृ श्राद्ध आरंभ करो। कौंडिन्य ऋषि के वचन अमृत के समान उन्होंने प्राप्त किए। अब वो अमृत के समान बात थी कौंडिन्य मुनि की, क्या कि उल्टी बात बोलो इसको। तो दालक चंडी से अब क्या बोले, उनको जो काम मतलब करना था ना, तो बोले कि नहीं करना है। इतो योजनम तीर्थम गौतमे ना भी पालितम तदृष्टा गमिष्यामी श्राद्धम आरभ्यतामिति तद्वचो मृतमापी है चंडी वाक्यम मथा ब्रवीन। और दालक ने कहा, प्रिय प्रातः काल महर्षि कौंडिन्य पुनः यहाँ आएंगे, उस समय मैं उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगा। मैं कभी भी उन्हें भोजन वस्त्र आदि नहीं दूंगा। तो अब वो करेगी, उन्होंने उल्टा बोला कि मैं ये नहीं करूंगा। प्रातरेशति कौंडिन्यो गृहान् निष्कासयामि तम तस्मै भोजन वस्त्रादि न दास्येऽहं कदाचन। तब चंडी बोली, अब वो बोली क्या, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी। और वस्त्रों और सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। गुस्से में बोली। जब उस चंडी ने ऐसी बात कही तो दालक मुनि हर्ष मग्न हो गए, मन में बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ है, गुस्सा कर रही है, काम तो सीधा कर रही है। तम भोजे चारते हम मस्ते पुष्पे दसो बने सदा प्रवाज साचंडी हर्षतो भुवन मुने सदाम। तत्पश्चात इसी बुद्धि के अनुसार दूसरे दिन उत्तम पितृ श्राद्ध भी करूंगा ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर वे रात में अपनी पत्नी से बोले। अब अगले दिन श्राद्ध करना है तो विचार कर लिया मन में कि करना है तो अपनी पत्नी से क्या बोले, अने वे परम बुद्धिया श्राद्धम करता परे हनी इति मत्या समालोच रात्रो जायाम दतो ब्रवीण। चंडी आज तुमको मुझसे दूर से दूर स्थान पर शयन करना चाहिए, मुझसे बहुत दूर तुम्हें सोना चाहिए आज, समझे ना। तो वो कहेगी मैं पास में सोऊंगी। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय उस चंडी ने मुनि की ही सही पर शयन किया। जब कहा कि बहुत दूर सो तो सही में सोई, दूरा दूरे तो या चंडी शयनम कार्य मध्य वित्युक्ता साधना चंडी सैया में काम वास। उस समय ब्राह्मण उद्दालक कमन हर्ष से भर गया और वे पुनः बोले, चंडी कल पिता का श्राद्ध होने वाला है परंतु मैं उसे नहीं करूंगा। करना है ना तो बोले नहीं करूंगा मैं, कल है लेकिन मैं नहीं करूंगा। पुनः प्रवाच विप्रोसो हर्षा विस्ते मना सदा मविता स्वापि दो श्राद्धम कैसे हम न चंडी के। चंडी ने कहा, गुस्से में बोली, विरोध करती ना, प्रातःकाल में आपके पिता के श्राद्ध का ऐसा ऐसा यथोचित प्रबंध करूंगी जिससे मेरे ससुर सुख और तृप्ति लाभ करेंगे। गुस्से में बोली मैं करूंगी। प्रभाते पितु श्राद्धम करिष्ये हम यथोचितम ससुरस्य यथा तृप्तिर भविष्यति सुखान्विताम। उद्धव बोले, प्रिय मैं रात के समय कहीं भी ब्राह्मण को निमंत्रण देने लगा तो बोले मैं जाऊंगी निमंत्रण देने। कि अब उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगी करूंगा जो ऐसा हो, मतलब जिसको नहीं चाहते हैं, तो इसको उसको बता रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण को मैं करूंगा निमंत्रण। कैसा, जो काना होगा उसको निमंत्रण करूंगा। तो कहेगी नहीं ऐसे ब्राह्मण को मैं नहीं करूंगी, जो काना हो लंगड़ा हो ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण करूंगा, काले दांतों वाला हो, कुबड़ा हो, मूर्ख हो, चुगलखोर हो, वेद रहित हो, विष्णु भक्ति से रहित हो, अंगहीन हो, जुआरी हो, आचार भ्रष्ट हो, रोगी हो, शूद्रा से उपभोग करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण करूंगा मैं। तो जो नहीं करना है तो वो बता रहे हैं कि ऐसा करूंगा, तो वो कहेंगे नहीं ऐसे मैं अच्छे ब्राह्मण को निमंत्रण करूंगी। रात्रो ब्राह्मण महम गच्छाम्या मंत्रितुम गचिन काणम खंजम श्याम दंतम कुब्जम विप्रम निमंत्रे मूर्खम सूचकम अप्रीतम वेदहीनम अवैष्णवम गंगम द्योतरतम नष्टम तरोगम मृतलीपतिम। चंडी ने कहा, मैं आज रात में ही उत्तम कुल में उत्पन्न ब्राह्मण को निमंत्रित करूंगी, पुत्र पौत्र पत्नी से संयुक्त हो, वेद शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित कराऊंगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊंगी, परंतु आपकी बात कभी सत्य ना होने दूंगी। गुस्से में बोली, ऐसे ही काम करूंगी मैं। अहम विजोत्तमान विप्रान वेद शास्त्र परायणान कुलीनान सम्मतान पुत्र पौत्र भार्या समन्वितान आमंत्रित यादेनशी प्रभाते तान समानये तुदीयं वचस तथ्यम करिष्यामि कदाचन। वो दालक बोले, चंडी यदि मेरे ही घर में मेरी बातों का उल्लंघन करके हट पूर्वक श्राद्ध अगर करोगी तो मेरे लिए सुखदायक नहीं होगा। तो बोली कि मैं करूंगी श्राद्ध। यदि श्राद्धम हटा देव क्रियते चंडी मंदिरे मदीयम वाक्य मुल्लंघ तन्न में ना सुखदायकम। और फिर उन्होंने कहा कि जो जो गलत सामग्री है वो मैं लाऊंगा, तो सब लिस्ट बता दी कि ये गलत चीजें हैं जिनको मैं लाऊंगा श्राद्ध के लिए, तो वो कहेगी मैं ये चीज नहीं लाऊंगी, वो अच्छी चीज लाऊंगी। जब कहा कि खराब खराब चीजें मैं लाऊंगा, तो सब लिस्ट बता दी खराब खराब चीजें क्या है, तो बोले मैं चना लाऊंगा, कोदो लाऊंगा, मटर लाऊंगा, मसूर लाऊंगा और काला उड़द लाऊंगा, कुल्थी अरहर और जुआर और मरकट यानी मक्का, खजूर और गुमा, ये जो शास्त्र में वर्जित जो हैं चीजें, और बैगन गाजर और चिल्ली तुरई कुमड़ा तरबूज और कद्दू और पिंडालोक लौकी और बर्तुला और कट सरैया और चौराई के पत्ते, ये सब लाऊंगा मैं। जो शास्त्र में निषिद्ध हैं, बोले मैं ये लाऊंगा श्राद्ध के लिए। तो चणकाना हरिष्यामी कोद्रमान मर्तुलान अपी मथुरान राजमासांसा कुलित्थान आढ़की पुनः यावनालान निष्पापवान वरटान मरकटान अपी खर्जूर कां चित्रपान श्राद्रे साकम च कुत्थितम वृद्धांकम गृंजनम चैव चिल्लीम कोशातकी फलम कोष्मांडकम कलिंगम चापिंडीम पिंडालुकम तथा अलापम वर्तलाम झिंटीम तंदुलीयम च पल्लवम। तो चंडी ने कहा कि मैं नहीं, वो चीजें मैं नहीं लाऊंगी। मैं लाऊंगी क्या? अच्छी चीजें, गेहूं, चावल, मूंग। गुस्से में बोली कि मैं ये चीजें लाऊंगी, तो जो अच्छी चीजें हैं, और मन को भाने वाले उड़द लाऊंगी और उनसे खीर बनाऊंगी, मैदे की पूरी बनाऊंगी या लुचई बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी और फेनिका बनाऊंगी, कुमुद पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण का भात तैयार करूंगी, उल्टा काम करूंगी। तो उन्होंने उल्टा कहा तो वो सीधा बता रही है, गौ का घी और दूध और शक्कर, केले के फल, स्वादिष्ट आम का रस, मन को प्रिय लगने वाले शिखरिन का भी घर में संग्रह कर लूंगी, और फिर दिन के आठवें मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक काम करूंगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धा पूर्वक नहीं करूंगा, तो बोले श्रद्धा पूर्वक ही करूंगी मैं सब काम। श्रद्धा पूर्वक वस्त्र दक्षिणा, पवित्र शाक और गोदान से संयुक्त श्राद्ध मेरे घर में होगा। चंडी की ऐसी बात सुनकर उद्दालक मुनि अब अपनी पत्नी से बोले, गोधूमान तंडुलान मुद्गान मासान चैव मनोरमान आनीयाहं करिष्यामी पायसं मंडकान अपीं मोदकान फेनिकां रम्यां भक्तं कुमुदय सन्निभं गव्यं घृतं तथा क्षीरं सितारं भाफलानि च सहकारे रसं स्वादु प्रियां सिकरणीं गृहे काले चाकुतपे श्राद्धं श्रद्धायुक्तं सवस्त्रकं दशदक्षिणं पूतसागैर धेनुदानेन संयुतम् इति चण्डी वचा श्रुत्वा मुनि प्रोवाचतां प्रियां। अब उद्दालक ने कहा, प्रिय यदि तुम हट पूर्वक पितरों का श्राद्ध करोगी तो इसमें मेरा अमंगल होगा, अतः शोभने मैं नीले रंग के वस्त्र धारण करूंगा और पाप की इच्छा से दूसरे तेल का दीपक जलाऊंगा। तो चंडी बोली कि मैं लीप पोत कर घर को सुंदर सजा दूंगी और अपने बनाए हुए पवित्र दीपों को तिल के तेल से जलाऊंगी और नीले रंग का वस्त्र घर में आने ही नहीं दूंगी। मनोरमम गृहम गुरियाम तिल तैलेन दीपकान मया कृतान शुचीन वस्त्र सादृश परिवर्जितम। तो फिर ब्राह्मण उद्दालक मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपनी उस प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं होने दिया। अंदर से बहुत खुश हो गए, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि बड़ा दुख दे रही है मुझको, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया अच्छी प्रकार से। तथो विप्रह प्रसन्न आत्मा चेतसा न बहिस्थित तया बुद्धिया पितु श्राद्धम सर्वम चक्रे नराधिपय। अब श्राद्ध में जितने और जैसे ब्राह्मण होने चाहिए वे सब वहां पधारे और श्रद्धा पूर्वक उसने सब काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि श्रद्धा पूर्वक नहीं करूंगा, तो बोले श्रद्धा पूर्वक करूंगी, तो श्रद्धा पूर्वक सब काम किया, है ना। तो पति में भी उसने श्रद्धा करी, उन्होंने कहा कि पति में श्रद्धा नहीं करना तुम, तो पति में श्रद्धा करी उसने पूरी तरह से। और अब स्वयं उद्दालक और चंडी ने भी भोजन किया। अब रात होने पर ब्राह्मण ने अब बात को भूल गए, मोह में आ गए, बात को भूल गए और मोह में आ गए। तो उन्होंने चंडी से सीधी बात कर दी कि जो तो मेरी बात मान रही है, तो सीधी बात कर दी उन्होंने। क्या बोले, चंडी तुम भली भांति पूजित हुए पिंडों के दोने लेकर सीख रही गंगा जी के जल में डाल आओ। अब बोला उन्होंने सीधा, समझे कि तो बात को मान रही है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक काम कर रही है, तो सीधा बोल दिया उन्होंने। ये सुनकर वेग पूर्वक पिंडों को गोबर के गड्ढे में फेंक दिया उसने, उल्टा काम किया, क्यों वो तो उल्टा काम कर रही थी ना हमेशा। लेकिन अब यहां पर क्या है कि उसकी बात भी उल्टी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम मेरी बात नहीं मानना, तो अब जो है ना अब उसने बोला मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब यहां पर तो फंस गई ना अपनी बात में, वो अपनी बात में फंस गई कि नहीं फंस गई, है ना। अब यहां बात को फिर उसने उल्टा किया तो उद्दालक मुनि क्रोध से भर गए, उसे सांप देखते हुए बोले, दुष्टे तू मेरी आज्ञा से सिला हो जाएगी, सिला बन जा तू, बहुत काल तक इसी अवस्था में पड़ी रहेगी। फिर युधिष्ठिर की अश्वमेध यज्ञ के लिए भ्रमण करते हुए घोड़े के अंग का तुझसे स्पर्श होगा तब तू मुक्त होगी। तो अब वो सौभरी मुनि कहते हैं कि हे पार्थ, ये वही सिला है, महाबली अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने हाथों के स्पर्श से इसे साप मुक्त कर दो, अर्जुन के हाथ के स्पर्श से इसका उद्धार होना है। अब इससे पता चलता है अर्जुन की महिमा कितनी है, अर्जुन भगवान के आज्ञा पालक सेवक हैं, तो उनके प्रभाव से अब ये शिला जो है ना क्या है, आज्ञा पालन करने वाली बन जाती है। तो अर्जुन सौभरी मुनि के कथन अनुसार वो सब कार्य किया, तब घोड़े के अंग स्पर्श से चंडी सांप से मुक्त हो गई और घोड़ा भी मुक्त होकर आगे बढ़ा। कृतम पार्थे न तत्सर्वम मुक्ता सा तुरगोयो चंडी साप के भयान मुक्ता अंग स्पर्शा तदा हरे। तब से भाई चंडी पति की आज्ञाकारिणी हो गई, किसके प्रभाव से, अर्जुन के प्रभाव से है? तो अर्जुन का कितना प्रभाव, अर्जुन जैसे अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं आपके वचन का पालन करूंगा, तो अर्जुन में कितना प्रभाव है कि उनके प्रभाव से वो चंडी जो है, जो कितना अपराध कर रही थी अपने पति का, वो सीधी हो गई, अपने पति की आज्ञा कारिणी हो गई। धन्यवाद। हरे कृष्णा।